और इस तरह जोखी ताल ने बचाई इज्जत, मैंने माँ के सामने स्वाभिमान की रक्षा की। इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन चूँकि मैं चाहता था कि पूरी घटना को एक ही बार में लिखा जाए, इसलिए मजबूरन पूरा एक साथ दे रहा हूँ। तो ठुलीगाड़ में मेरे जैसे थोड़ी देर के लिए भी कहीं टिक कर न बैठ पाने वाले लड़के को जौ की ताल सबसे बढ़िया जगह लगी। यह हमारे घर से करीब 150-200 मीटर दूर थी। यहाँ चट्टाने कुछ इस तरह के आकार की थीं कि पानी 2-3 मीटर ऊंचाई का जलप्रपात जैसा बनाता था, और इस प्रपात के चलते बाकी जगहों की तुलना में यहाँ गाढ़ का तल कट कट कर गहरा हो गया था। गहरा इतना था कि अगर हाथ ऊपर करके पानी में सीधे खड़े हो जाते तो भी हमारा हाथ ऊपर से दिखाई नहीं देता था। खड़ी चट्टानों के बीच बेतरतीब आकार के इतने गहरे ताल में सीधे उतर जाने का साहस मुझमें नहीं हो सकता था, पर भला हो हमारे मकान मालिक का जो उन दिनों युवा थे और व्यायाम के नाम पर इसी ताल में तैरने जाते थे। मैं उनके कंधे पर ही सवार हो पहली बार इस ताल में उतरा। मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब उनके कंधे से उतरकर खुद ही पानी में चला गया और देसी स्टाइल में तैराकी करते हुए ताल की लंबाई चौड़ाई नापने लगा। कुछ ही समय में हाल यह हो गया कि मैं करीब 20 फुट ऊपर खड़ी चट्टान से सीधे ताल में कूदने लगा। यह बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि खड़ी चट्टान से ताल की ओर कूदते हुए यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि मैं इतनी ही जोर से कूद लगाऊं कि दूसरी ओर की चट्टान पर न गिरूं, और यह दूरी इतनी कम भी ना हो कि इस ओर कुछ नीचे आगे निकली हुई चट्टान के कोने से न टकरा जाऊँ। बाद में तो मैं इस तरह कूदने में इतना निपुण हो गया था कि आँख बंद करके भी कूद जाया करता था। बस मुझे अपने मध्यवर्ती अंडाकार सुकोमल भाग के चारों ओर उंगलियों की दीवार बनानी पड़ती थी, ताकि पानी पर पड़ने के बाद छपाक की आवाज़ के साथ ही मेरे मुंह से दर्द भरी कराह न निकले। जाहिर है ऐसा मैंने एक दो बार मिले दर्द भरे अनुभव के बाद ही करना शुरू किया था। जौ की ताल से हमने मछलियाँ भी बहुत पकड़ी। सामने कासनी गांव के लड़के तो केकड़े पकड़ कर भी खाते थे, पर मैं ऐसे खाने के मामले में थोड़ा तमीज़दार था। युवा मकान मालिक, जिन्हें मैं उनकी कद काठी के चलते बाद में कर्नल साहब पुकारने लगा था, जिनका 6 महीने पूर्व ही दिल्ली में इंतकाल हुआ, मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने गाँव के युवाओं को काम पर लगाते थे। वे युवा ग्रेनेड, जिसे हम अपनी भाषा में पानी का बम कहते थे, के धमाके से मछलियों को मारते थे। धमाके की आवाज़ सुनकर मैं भी दौड़ा दौड़ा जौ की ताल पहुँचता था, जहाँ पानी में मछलियाँ उल्टी तैर रही होती थी। मैं भी घर के लिए थैला भर कर मछलियाँ ले आता था। जौ की ताल ने एक बार मुझे अपमानित होने से भी बचाया। यह भी अपने में थोड़ी अलग तरह की घटना है, जिसे मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ। यह मैंने अपने घर वालों, बड़े भाई या गहरे से गहरे किसी दोस्त को भी नहीं बताई। तब शर्म और अपमान से बचने के लिए नहीं बताई थी, पर अब लगता है कि शर्म और अपमान हमारे दिमाग का कूड़ा है। यह संसार जीने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बशर्ते कि हमारे दिमाग में सही गलत अच्छे बुरे का झोल न बने। अब आप ही बताएं कि अगर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का पेट खराब हो जाए और वहाँ गैस ऐसा तूफान बर्पा कर दे कि पूरे वजूद पर दर्द की सिलवटें पड़ जाएं, तो वह बेचारा क्या करेगा? दर्द को झेलने से कहीं आसान है स्कूल की यूनिफॉर्म पर भिन भिनाती मक्खियों और उन लोगों की नज़र को झेलना, जो बदबू का झोंका आने पर आसपास देखने के बाद बच्चे की नेकर पर ही नज़रें टिका देते हैं। दिल्ली में एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, और घर पहुंचने पर ऐसी बदबूदार नेकर को धोने की कठिन परीक्षा से गुजरते हुए न चाहते हुए भी माँ के मुँह से पेट के दर्द को सहने और पेट में पाचन के बाद रह गए पदार्थ को शरीर से उचित समय पर उचित स्थान न मिलने तक विलग न होने देने की मेरी काबिलियत पर सवाल उठाए गए, जो मेरे अंतस में छोटे बारीक तीरों की तरह चुभे ही रह गए। ये तीन ही थे कि पिथौरागढ़ में एक बार स्कूल से लौटते हुए मैंने वह सब किया जिसका ब्यौरा यहाँ दे रहा हूँ। मुझे अब याद नहीं कि उस रोज़ स्कूल जाने से पहले या स्कूल के दौरान मैंने ऐसा क्या खा लिया था कि छुट्टी के बाद स्कूल के अहाते से निकलते निकलते पेट का मौसम बेतरह बिगड़ गया। गनीमत है मुझे जरा सी दूरी पर एक पुलिया मिल गई, जिसके नीचे गंदा सा नाला बहता था। एक नाला भी आपकी ज़िंदगी में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है, मुझे उस रोज़ मालूम चला। जबकि मेरे सभी सहपाठी जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं और इन लड़कियों में अर्चना वर्मा भी रही ही होगी, मेरे आगे पीछे जा रहे थे। मैं किसी बहाने से चुपचाप पुलिया के नीचे उतर गया। मेरी किस्मत का सितारा बहुत बुलंद रहा होगा कि इस नाले के बीचों बीच बहते गंदे पानी के साथ मुझे सूखी ज़मीन मिल गई, जहाँ पर बैठकर मैं शरीर के भीतरी अवांछित पदार्थ को बाहर का रास्ता दिखा सकता था। लेकिन यह कार्य कमांडोज की द्रुत रफ्तार से किया जाना था, लगभग वैसे ही जैसे अमेरिकी कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। क्योंकि इस बात की आशंका थी कि मेरे पीछे से आ रहे किसी सहपाठी ने मुझे पुलिया के नीचे उतरते न देख लिया हो, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो वह जिज्ञासावश नीचे उतर कर झांक भी सकता था कि मैं आखिर क्या करने नीचे उतरा हूँ। और अब जब उसे वह दृश्य दिखता जिसकी आप अभी कल्पना कर ही रहे होंगे, तो सोचिए वह अगले रोज़ कितना मसाला लगाकर हमारे दूसरे साथियों को अपनी खोज के बारे में बताता। मैंने बिजली की रफ्तार से काम किया और इससे पहले कि किसी को कुछ हवा लगती, मैं पदार्थ का विसर्जन कर पुनः घर लौटते बच्चों के बीच शामिल हो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मैं इस कामयाबी पर खुश होने का मन बना ही रहा था कि अचानक मुझे फिर से पेट में एक मरोड़ सी उठती महसूस हुई। और इससे पहले कि मुझे ठीक ठीक पता चल पाता कि क्या हुआ, मैंने पदार्थ को द्रव के रूप में अपनी त्वचा पर फिसलते महसूस किया। साली निकल गई, मैंने ज़रूर ऐसा कुछ कहा होगा। और उसके तुरंत बाद मेरे साथी दिमाग ने मुझे अपना स्वेटर उतारकर कमर में बांध लेने का आदेश दिया, ताकि वह पदार्थ किसी को दिखाई न दे। मैंने एक अक्लमंदी का काम यह किया कि सड़क छोड़कर मैं उसके साथ चल रहे खेतों में उतर गया, जहाँ कोई बच्चा न था। ऐसा करके मैं आश्वस्त हुआ कि चलो अब न सिर्फ कोई पदार्थ को देख नहीं पाएगा, बल्कि उसकी गंध भी किसी के दिमाग में शक न पैदा करेगी। खेतों के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता था, मैं उसी पर चलने लगा। लेकिन उस दिन दुर्भाग्य मेरे पीछे जैसे हाथ धो के पड़ गया था। मैं खेतों के बीच कुछ दूर ही चला था कि मैंने दो तीन कुत्तों को आपस में खेलते हुए देखा। उन्हें यूँ खेलता देख मेरे बालमन को भी खेल सूझा और मैंने झुककर खेत से एक मिट्टी का ढेरा उठाकर उनकी ओर फेंक दिया। अब ये ऐसा भी बड़ा अपराध न था कि वे कुत्ते अचानक गंभीर हो जाते और खेलना छोड़कर मेरे पीछे ही पड़ जाते, पर उन कुत्तों ने यही किया। अब आप एक बार पुनः अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं कि एक बालक दर्दनाक मरोड़ों से भरा पेट लिए पहले से ही थोड़े विसर्जित पदार्थ के साथ, जो कि अब उसके मोजों के किनारों पर दस्तक देने लगा था, हाल बेहाल किसी तरह पैदल चल रहा हो और तीन खूंखार कुत्ते अचानक उसके पीछे पड़ जाएं, तो कैसा दृश्य होगा। मैं खेतों को कूदता फांदता हुआ भागा और इससे पहले कि उन तीन कुत्तों में से एक मेरे पैरों पर अपने दांत गड़ाने की ज़रूरत करता, मैंने हिम्मत बटोरी और झुककर ज़मीन से एक पत्थर उठा लिया। अब मैं पत्थर लिए हाथ ऊपर उठाकर खड़ा था, यूँ कि जैसे पत्थर मारने ही वाला हूँ, और सामने तीन कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे। वे आगे बढ़ते और मेरे पत्थर वाले हाथ को देखकर सहम कर पीछे हो जाते। अब यह मेरा भाग्य था कि खेत में एक अंकल काम कर रहे थे, और यह भी सौभाग्य की बात थी कि उनके हाथ में एक डंडा भी था। वे हड़ी हड़ी करते हुए हमारी ओर भागते हुए आए। उन्हें देख कुत्ते दुम दबाकर भाग गए और मेरी सांस पर सांस आई। अंकल ने मेरी ओर बड़े फख्र से देखा कि कैसे उन्होंने कुत्तों को हड़का दिया, पर मेरा सारा ध्यान तो पदार्थ की ओर था जो मेरे बेतरतीब होकर बिखर गया था। लगता था कि दौड़ते हुए उसकी मात्रा में कुछ इजाफा भी हो गया था, क्योंकि मुझे सफ़ेद मोजों पर खाकी धब्बे दिख रहे थे। अब मैंने पीछे लटके स्वेटर को खोलकर सामने किया तो वहाँ भी आसमान में तारों की तरह कुछ छींटे बिखरे पड़े थे। जाहिर था कि मैं ऐसी अवस्था में माँ के सामने नहीं जा सकता था। कुछ देर तक मैं क्या करूँ सोचता रहा, और जब दिमाग में आइडिया कौंधा तो मेरे चेहरे पर पहली बार मुस्कान चमक उठी। मैंने खेतों से गुजरते हुए ही अपनी राह बदल ली। अब मैं घर की बजाय सीधे गाड़ की ओर जा रहा था। मेरी मंजिल चौकीताल थी। मैंने मन ही मन सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं सीधे चौकीताल पहुँच स्वेटर और बस्ते को उतार बाकी कपड़ों समेत ताल में कूद जाना चाहता था। ऊपर से जब पूरे वेग के साथ पानी में गिरूंगा तो शरीर में जगह जगह विभूषित पदार्थ स्वयं जलमग्न हो जाएगा। मुझे सिर्फ यह डर था कि अगर वह जलमग्न न होकर ऊपर आ गया तो क्या होगा। अब मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे वहाँ कोई बच्चा न मिले। पर आज के दिन मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं दे रहा था। मैंने दूर से ही देख लिया कि जौ की तरह बच्चों से भरी हुई थी। कुछ नहीं तो 5-6 बच्चे तो रहे होंगे। वे बच्चे आसपास के गांव में रहते थे और मेरे साथ ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे। पर मैं जैसे ही गाड़ के पास पहुंचा तो पानी देख पानी देख मुझे गहरी राहत मिली। पानी मटमैला था, अभी एक दिन पहले बारिश हुई थी जिसका प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे हरी घास में हरा कीड़ा देख पाना मुमकिन नामुमकिन होता है, वैसे ही मटमैले पानी में मटमैला पदार्थ कौन देख सकता था। जौ की ताल पहुँच मैंने बस्ता और स्वेटर एक और रखा और अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में एक हाथ हवा में उठा और दूसरे हाथ से शरीर के सबसे सुकोमल अंग की रक्षा करते हुए सबसे ऊपरी चट्टान से कूद लगा दी। पानी में मैं एकदम तले तक पहुँचा। ऊपर आते हुए मैंने अंत वस्त्रों को पानी के भीतर ही का पानी के बाहर निकल मैंने इस तरह तब तक कूद लगाई जब तक कि आश्वस्त न हो गया कि मेरे शरीर से पदार्थ का कोई कण भी शेष नहीं है। वहां बाकी के लड़के मुझसे साथ में खेलने को कहते रहे, पर मैं तो एक जरूरी मिशन पर था। उन लड़कों में से किसी को भनक नहीं लगी कि मैं कौन से मिशन पर था, पर आज इतने वर्षों बाद इस आशंका के मद्देनजर कि उनमें से कोई इस वृत्तांत को पढ़ सकता है, मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता हूँ कि मुझे मजबूरन उस ताल को उस तरह गंदा करना पड़ा जिस तरह कि मैंने किया। उम्मीद है कि वे मुझे माफ़ कर देंगे, यह समझते हुए कि वैसा मैंने मज़ा लेने के लिए नहीं बल्कि घनघोर इमरजेंसी में किया था। वैसे गाढ़ का पानी बहता हुआ पानी होता है, थोड़ा बहुत पदार्थ तो उसमें हमेशा ही रहता होगा, क्योंकि मेरी तरह न जाने कितने होंगे जो हम तक गाढ़ के पहुँचने से पहले उसका उपयोग पदार्थ विसर्जन के उपरांत उसके छूट गए अवयव को साफ करने में करते होंगे। मेरी कामयाबी यह थी कि उस दिन मैं घर पहुंचा तो माँ ने इस बात पर हल्की डांट लगाई कि मैं दिन में कपड़ों समेत सहित ही जौ की ताल में नहा के आ रहा हूँ, लेकिन उसे असली बात की ज़रा भी भनक नहीं लगी और इस तरह मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में सफल रहा।